हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही ने रुहान के चेहरे को करीब से देखते हुए धीरे से पूछा, आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं और मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और होनी चाहिए थी, या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप मुझे करीबी नहीं बन पा रहे हैं? आपने पहले दिन क्या सोचकर मुझसे कहा कि मैं आपके प्राइवेट स्पेस में ना आऊं? एक सवाल पूछने के बहाने अनाही ने रुहान के सामने सवालों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था, जिसके बारे में फिलहाल रुहान धीरे धीरे सोच पा रहा था। उसने अपने सर को खुजाते हुए धीरे से कहा, क्योंकि मैं आपको दूर दूर से देखने लायक ही हूँ। अनाही को रुहान का ये छोटा सा जवाब जरा भी समझ नहीं आया था। उसने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए फिर से पूछा, मैं समझी नहीं कुछ? रुहान ने अपनी कांपती उंगलियों से उसके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो हाथ बीच में ही रुक गया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और अपना हाथ पीछे खींचते हुए धीरे से बोला, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपके लायक नहीं हूँ और मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं आपके लायक बन जाऊँ, पर उन कोशिशों में क्या करूँ कि फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने इसका दूसरा तरीका निकाला। शायद मैं अगर आपके सामने बुरा बन जाऊँगा तो आप खुद ही मुझे छोड़कर चली जाओगी और उसके बाद मुझे आपके लायक नहीं बनना पड़ेगा और मेरी लाइफ में कोई लड़की रहती ही नहीं है। अनाही ने आंखें छोटी करते हुए कन्फ्यूजन में कहा, मतलब आपका रिलेशन था पहले? रुहान ने अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, मैडम जी सॉरी, आप जितनी प्योर हो आपको आपका पार्टनर भी उतना ही प्योर मिलेगा। डोंट वरी, मैं कभी आपके करीब नहीं आऊँगा और मैं आपसे बहुत बहुत दूर चला जाऊँगा। और एक बात, मेरी जिंदगी में लड़की थी, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, और वो इसीलिए चली गई क्योंकि मैं रोज़ रोज़ लड़ाई करता हूँ और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अनाही ने गहरी सांस ली तो रुहान ने कहा, आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है 90% लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपसे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं करूँगा कि आप ये सब बर्दाश्त करें। जब भी आपका मन हो आप मुझे टाइम पास दे सकती हैं। अनाही ने आंखें बड़ी करके रुहान को देखा, यहाँ वो इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उसका हस्बैंड है जिसका विचार तो डाइवोर्स तक पहुँच चुका है। अनाही ने गुस्से से कहा, खबरदार जो ऐसा शब्द फिर से यूज़ किया। मैंने इसलिए शादी नहीं की थी ताकि मैं अपने पति को डाइवोर्स दे दूं। मैं पूरी ज़िंदगी आपको डाइवोर्स नहीं दूंगी। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको मुझसे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपकी ज़िंदगी से नहीं जाऊंगी। हाँ, आप तक के मर के निकाल दो, वो अलग बात है। रुहान होठों पर मासूम सी स्माइल लिए अनाही को देख रहा था, वहीं अनाही उसके हाथ को देख रही थी जो कितनी बार उसे छूने के लिए आगे ज़रूर बढ़ चुका है पर उसे छू नहीं पा रहा है। अनाही ने रुहान के चेहरे को देखा जिस पर दर्द झलक रहा था इस बात का कि वो चाहकर भी अपनी पत्नी को छू नहीं पा रहा है। अनाही ने उसका हाथ थामा और फिर अपने गाल पर रखते हुए धीरे से कहा, आई एम रियली सॉरी, सुबह मैंने जो जो कहा था वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्या आप एक बार अपनी पत्नी को माफ़ नहीं करेंगे? रुहान आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैडम जी आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आपने कुछ गलत नहीं कहा, बस जो जैसा है उसको वैसा आईना दिखाना चाहिए। फिर वो अनाही के करीब बढ़कर उसके गाल को और भी ज़्यादा अच्छे से छूकर उसकी सॉफ्ट स्किन को महसूस करते हुए बोला, थैंक यू सो मच मुझे खाना खिलाने के लिए, और ये खाना बहुत टेस्टी था। अनाही ने मुस्कुराकर उसका जवाब देना चाहा, उससे पहले रुहान उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। अनाही बस एक हाथ में खाने की प्लेट पकड़े उसे देखती रह गई। फिर अनाही ने हल्का सा मुस्कुराकर ना में सर हिलाया और फिर खुद भी खाना खाने लगी, क्योंकि अब वो इस तरीके से तो यहाँ से उठकर जा नहीं सकती थी। खाना खाने के बाद उसने रुहान से कहा, रुहान जी मैं पानी लेकर आती हूँ, ऐसे झूठे मुंह नहीं सोते हैं, उसके बाद आप वापस लेट जाना, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। रुहान ने अपनी छोटी उंगली अनाही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले प्रॉमिस करो मुझे गोद में सोने से नहीं रोकोगी आप? अनाही ने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी छोटी उंगली उसकी तरफ बढ़ा दी। वो उंगलियाँ जैसे ही मिली रुहान मुस्कुरा उठा और फिर वो उसकी गोद से साइड हो गया। रात के करीब 2 बजे थे जब अनाही थक कर चूर हो चुकी थी। उसके कमर में दर्द हो रहा था बैठे बैठे। वो हल्का सा पीछे खिसक कर बेड रेस्ट से अपनी पीठ टिकाते हुए बोली, पड़ेगा। फिर उसने एक नज़र रुहान को देखा जिसके चेहरे पर दुनिया जहाँ का सुकून बिखरा था। अनाही ने प्यार से उसके सिल्की बालों पर हाथ घुमाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह करीब 6 बजे अनाही की आंखें खुली। उसने आंखें खोलकर देखा तो रुहान अब भी उसकी कमर को अपनी दोनों हाथों से पकड़े उसे बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लिपटा हुआ था। उसे देखकर अनाही को शुगर की याद आ गई जो रुहान से बिल्कुल इसी तरह लिपटकर सोती है, पर आज वो नजर नहीं आ रही थी। अनाही ने आहिस्ता से रुहान के हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम थीं। लेकिन उसके इन कोशिशों से रुहान की आंखें जरूर खुल चुकी थीं। उसने आंखें खोलकर अनाही की तरफ देखा। कुछ पल लगे उसे समझने में कि आखिर वो किस पोजीशन में सो रहा है। फिर अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो अनाही की गोद में सो रहा है। वो झट से उठकर बैठ गया और फिर हड़बड़ा कर बोला, आई एम सॉरी। अनाही ने उसके चेहरे को देखा और फिर धीरे से कहा, इट्स ओके। और फिर वो बेड से उठकर जैसे ही खड़ी हुई, उसके होंठों से हल्की सी ए निकल गई, क्योंकि उसकी कमर अकड़ने की वजह से अब उठते ही कमर में बहुत तेज दर्द हुआ था। रुहान जल्दी से बेड से उठा और बेचैनी से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ आपको, कहीं लगी है? अनाही ने ना में सर हिलाया, नहीं नहीं, हल्का सा मुड़कर रुहान को देखा और फिर ना में गर्दन हिलाकर कहा, रात भर ऐसे बैठे रहने से बस थोड़ी सी कमर अकड़ गई है और आज मुझे ज्यादा बेटर फील हो रहा है, सो सॉरी, स्पीच चली जाती हूँ, मेरा जुकाम भी ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। रुहान ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन हिलाई और शुगर के कमरे में चला गया। अनाही को उसकी ये चुप्पी भी खल रही थी। शायद अनाही भूल चुकी थी कि रात में जो रुहान था वो नशे की हालत में था। फिलहाल वो वापस वही रुहान बन चुका है जिससे उसे चिढ़ है। अनाही भी गहरी सांस लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनकर बाहर आई जो उसके गोरे बदन पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपना मेकअप किया और फिर आखिर में एक छोटी सी हेयर कलर की बिंदी माथे के बीचों बीच लगाते हुए बोली, मैं पहले कॉफी बना लेती हूँ, उसके बाद वेदांची को कॉल करूँगी। इतना सोचकर अनाही कमरे से बाहर चली गई। उसे बाहर आते देख कर राधिका ने कहा, बड़ी बहू, तुम्हारी बहन अगर अपने घर वालों को इतना ही याद करती है तो तुम लोगों को उसकी शादी थोड़ा रुक कर करनी चाहिए थी। पता है लोग कितनी बातें बनाते हैं जब घर की बहू पांचवें दिन ही वापस अपने घर चली जाए। अनाही ने मुस्कुराकर कहा, चाची जी, वो बच्ची है, ये तो आपको भी पता है। और रही बात शादी की, तो हाँ, दोनों तरफ से हुई थी और उसका बचपन तो पहले भी दिख रहा था, तो इसमें आप सिर्फ हमें दोष नहीं दे सकती हैं। पास बैठी माधवी ने राधिका का साथ देते हुए कहा, अनाही, माना तो मॉडर्न जमाने की हो, लेकिन अपनी चाची से ऐसे जबान लड़ाकर बात नहीं करनी चाहिए, यही बात तुम प्यार से भी होने बोल सकती हो।
अनाही ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, ताई जी, मैंने प्यार से ही बोला है, अगर आपको वो गुस्से वाला लग रहा है तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। मैं तो बड़ी शांति से कहा है कि हाँ, मेरी बहन में बचपना है। माधवी और राधिका ने सपने में भी नहीं सोचा था ये संस्कारी दिखने वाली बहू उन्हें ऐसे मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है।